हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम पावन सरोवर इस पवित्र क्षेत्र पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। नंदगांव में है यह स्थान और ये स्थान की महिमा अगाध है। बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। तो हम संक्षेप में आपको सब बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम को जब भेजा गौलोक धाम से, तो आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आइए, थोड़ा आगे आइए। तो श्री वृंदावन धाम जो है वो परिपूर्ण धाम है। परिपूर्ण यानी कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है। हर प्रकार का प्राप्ति, हर प्रकार की कृपा, हर प्रकार की हर चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो जहाँ कहीं भी जब कभी भी श्री वृंदावन धाम छोड़ने का समय बात हुई है, तब भगवान ने उसको टोका है, नहीं जाना है यहाँ से बाहर। जैसे मानसी गंगा के समय में बोला भगवान की, गंगा जी की महिमा सुन रहे थे नंद बाबा, तो तुरंत सुन के बोले हम अभी चलना है नंद गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो भगवान ने उनको रोका है उधर, और सबको भगवान गिरिराज जी के बीच में लेके गए और अपने हृदय से गंगा जी को प्रकट किया, उसका जल को प्रकट किया, सबको स्नान करवाया और यहाँ से बाहर जाने का प्लानिंग कैंसिल करवाया। वैसे ही भगवान ने नंद बाबा को चार धाम जाने से भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपका जन्म होने के पहले हमने मन्नत मांगी थी कि आपका जन्म होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, अभी आप जन्म हो गया, बड़े भी हो गए हो, उनको जाना चाहिए। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं, आप चार धाम नहीं जाएंगे, हम चार धाम को यहीं बुलाएंगे। तो आँख बंद करवाई, आँख खुलवाई तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, नरनारायण ऋषि, जमरोत्री, गंगोत्री, हर की पौड़ी, हरिद्वार, महेंद्र पर्वत, मानसरोवर, सारे स्थान जितने भी है हिमालय में सारे प्रकट कर दिए और सबके सामने प्रकट हो गए वो। उन्होंने स्नान किया और आज भी कभी मौका आएगा तो आपको ले जाएंगे आदि बद्री और केदारनाथ। बहुत सुंदर स्थान है कामेवन में। हाँ, बहुत मतलब कैसी कृपा है वृंदावन में। एक्चुअली जैसे आप लोग जाएंगे ना कभी ऊपर जाएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ में, बड़ा कष्ट है वहाँ पहुँचने के लिए। हाँ, कुछ समय में जा सकते हैं, साल भर जाना मुमकिन नहीं है। और बड़े बहुत घंटे तक वह पहाड़ में ऐसे ऐसे गोल 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 जाना पड़ता है, उल्टियाँ होती है, हवा का दाब कम रहता है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, बीमार हो जाते हैं, बहुत बर्फ़ पड़ती है, ठंड होती है, केवल पानी प्रवाहित है, केवल पानी प्रवाहित है इसलिए वो जल है, रुक जाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा, इतना ठंड पानी होता है। जब अंदर घुसेंगे पानी के अंदर तो कुछ स्पर्श का ध्यान ही खत्म हो जाएगा। अब टॉवल से बॉडी पोंछ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा आप बॉडी पोंछ रहे हैं, एकदम स्पर्श ज्ञान खत्म हो जाता है। सो तो हरे कृष्णा सर, आपको कष्ट होगा, मतलब सुना नहीं पड़ेगा आपको कुछ, आगे वाला आ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप असली वास्तविक चार धाम में जाएंगे तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आप आदि बद्री और केदारनाथ जाएंगे यहाँ के, तो आपको पता चलेगा कि इतना आसान है वहाँ पहुँचना और वैसा ही दृश्य है पूरा, वैसा ही एकदम सेम, लेकिन सारे पर्वत छोटे हैं, आसानी से आप चढ़ सकते हैं। हवा का दाब बढ़िया है, ऑक्सीजन बढ़िया है, तापमान बढ़िया है, आराम से दर्शन कर सकते हो। और वहाँ जो लाभ मिलेगा उसके लक्ष्य गुना लाभ यहाँ मिलेगा, ये और बेनिडिक्शन है। तो वही धाम जब यहाँ प्रकट होते हैं ब्रजभूमि के अंदर, तो उसकी अनंत कृपा प्राप्त होती है। उसकी चार धाम में जाके आपको जो लाभ मिलेगा, उसी चार धाम को यहाँ पर दर्शन करेंगे आप काम में बन में, तो उससे आपको लक्ष्य गुना बाद लाभ मिलेगा। एक लक्ष्य गुना कम प्रयास करने पर भी लक्ष्य गुना लाभ मिलेगा। दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक। इसलिए ब्रज में केवल ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट में आपको प्रकट करा दिया है, शॉर्ट में ऐसा नहीं, शॉर्ट में है बाह्य दृष्टि से, लेकिन अंतर्दृष्टि से वो अनंत गुना प्रभावी है। तो गया कुंड है, अब गया में जाएंगे सात कर्म करेंगे तो केवल मुक्ति मिल सकती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ गया में जाएंगे राम में वन में तो आपको न केवल मुक्ति मिलेगी, कृष्ण का प्रेम भी मिलेगा। और वहाँ जाकर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, खाली वहाँ पहुँच जाना बस। आप जैसे पहुँच जाएंगे आपके इस साइड के और इस साइड के जितने भी गुजरे हैं सबकी उद्धार हो जाएगा, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। जस्ट यू हैव टू गो देयर, सो पावरफुल। वैसे ही ये धाम है पावन सरोवर, ये वैसे नंद सरोवर है, नंद बाबा का खुद का कुंड है ये। नंद महाराज राजा, नंदगांव के राजा जो है उनका एक कुंड है खुद का, और इसमें एक जगह पर वो स्वयं स्नान करते थे, एक जगह पर यशोदा घाट है, एक जगह पर यशोदा कुआं है, ऐसे बहुत विस्तार रूप में। ये उनका निजी प्राइवेट प्लेस है ये, इमेजिन ना राजा का कैसा थाट होते राजा के। तो इसी में यशोदा घाट है, जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो मैया कृष्ण बलराम को दोनों को लेकर यहाँ स्नान कराए थे। थोड़े बड़े हो गए तो उनको संकोच होने लगा, होते ना बड़े हो गए तो रहता होता है मम्मी के सामने कैसे अभी, तो उनका अलग कुंड बना कृष्ण कुंड, वहाँ पर वो स्नान करते थे। और यहाँ यशोदा कुआं है, थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी तो पानी आया ना उधर तो जाएंगे तो यशोदा कुआं भी है। वो कुआं यशोदा माता जी ने राधा रानी के लिए बनवाया था, जब राधा रानी को वो पीले पोखर की कथा थी ना, वहाँ से उनको यहाँ से गए थे ना वो हाथ धोने के लिए। तो वो राधा रानी को जब उन्होंने कीर्ति मैया से पूछा कि हम क्या इनको रोज नंदगांव को ले जा सकते हैं भोजन बनाने के लिए कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि उनको वरदान था ना कि राधा रानी ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया था, उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी इनके हाथ से खाना बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी पाएगा वो रोग से मुक्त हो जाएगा, जो भी पाएगा वो विजयी रहेगा हमेशा, यशस्वी और विजयी कीर्तिमान रहेगा। तो मैया के मन में आया कि हमारी कन्हैया के लिए ये बढ़िया काम है। तो वहाँ गए, वो कीर्ति मैया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हाँ कर दी। जब पहली बार ले आई तो यहाँ कुआं बनाया ताकि वो कुएं के पानी से राधा रानी कृष्ण बलराम के लिए भोजन बनाए। तो वो कुआं भी इधर ही है, थोड़ा आगे यशोदा कुआं बोलते हैं इसको, यशोदा कूप। और ये हम लोग यशोदा घाट पे बैठे हुए हैं। तो नंद बाबा एक दिन ऐसे ही, हमने कहा ना आपको त्रिवेणी संगम का महात्म्य सुना उन्होंने, गंगा जमुना और सरस्वती नदी का जो संगम है त्रिवेणी, उसका महात्म्य सुना और तुरंत झट से प्लानिंग कर लिया हम जाएंगे अभी स्नान करने के लिए। तो बाबा तैयारी कर रहे थे और मैया लंबा सफर है इसलिए मठरी बना रही थी, सूखा प्रसाद जो ट्रेन में मतलब दूर की यात्रा में काम आएगा। तो कन्हैया जाके पूछते मैया क्या बन रहा है आज, मठरी बन रही है, क्यों बन रही है मठरी आज? नहीं बाबा जा रहे हैं ना त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए इसलिए बन रही है। तो नहीं त्रिवेणी क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं वो स्नान करने से बहुत लाभ होता है, पुण्य पाप नष्ट हो जाता है। तो उनके बात हमेशा की तरह अच्छी लगी नहीं कि ब्रज के बाहर क्यों जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों आज जा रहे हैं? उनको कहना कल जाना, कल अक्षय तृतीया का दिन है, वो बड़ा पवित्र मुहूर्त का दिन है। तो ये बात तो बढ़िया है, अच्छी है, आज के बाद कल जा सकेंगे। तो बात मटरी बनती रही, आज का प्लान कल पे गया। तो अक्षय तृतीया के दिन रोज की तरह रोज नंद बाबा उठते थे, भोर के समय पे यहाँ पर स्नान करते थे और विष्णु का भजन करते थे। हर रोज का जगह है उनका, हर रोज का स्थान है। इस दिन आए स्नान करने के लिए तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा, एक बड़े लंबे चौड़े महाराज लंबा चौड़ा मुकुट जो हीरो का पहन के, राज वस्त्र पहन के, राज पूरा ठाट से के साथ में, वस्त्र के साथ में मुकुट पहन के उसमें स्नान कर रहे हैं, उनका तेज सब जगह फैला हुआ है। रात के अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में देखते रह रहे, इनको तो नंदगांव में कभी देखा नहीं, बहुत गौर से देखा, पास में गए और विनती किया, महाराज आप कौन हो? मैंने कहा मैं प्रयागराज हूँ, त्रिवेणी संगम स्वयं हूँ। बोला अच्छा, तो उनको बोला कि बहुत आपको दंडवत प्रणाम है, नमस्कार है आपको, आप तीर्थराज हैं, प्रयागराज हैं, आपको दंडवत प्रणाम है। लेकिन वो कुछ अजीब चीज़ कर रहे थे, वो इसमें स्नान कर रहे थे, फिर किनारे में मट्टी में लोटपोट हो रहे थे, फिर स्नान कर रहे थे, फिर लोटपोट हो रहे थे, फिर स्नान कर रहे थे। ये क्या चीज़ है महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो स्नान करके चले जाते हैं, आप स्नान करके मट्टी में लोटपोट हो रहे हो। वो कहते हैं कि साल भर मेरे अंदर दुनिया भर के पापी लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपना सारा पाप छोड़ देते हैं इसके अंदर। अक्षय तृतीया के दिन मैं यहाँ पर आता हूँ और रज में लोटपोट होकर स्नान करता हूँ बार बार, तो उस पाप से मैं मुक्ति प्राप्त करता हूँ और फिर मैं अगले साल के लिए सेवा करने के लिए वापस वहाँ जाके विराजमान रहता हूँ। अरे वाह, बढ़िया बात है। अरे जहाँ मैं स्नान करने जाने वाला था वहाँ के देवता जो है ना, वो मतलब भक्त जो हैं ठाकुर जी, हर धाम व्यक्ति है, हाँ हर धाम जो है व्यक्ति है, वो व्यक्ति व्यक्ति जो है वो पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, स्थान के रूप में ठाकुर जी की सेवा करता है। तो जो भक्त हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज, बोले उसमें मैं स्नान करने वाला था, वो स्वयं मेरे कुंड में आके स्नान करते हैं, तो वो प्लान कैंसिल करते हैं, प्रयागराज यात्रा कैंसिल, मटरी घर पे ही खाएंगे। हाँ तो बात करके महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भी नंद महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको आराध्य है ना वो। तो आगे किनारे में मुड़ के देखते हैं तो वो किनारे में क्या हो रहा है, गंगा जी सॉरी कई सुंदर युवतियाँ वहाँ पर स्नान कर रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर, इनका तेज सब जगह फैला हुआ है, कई स्त्रियाँ हैं, एक नहीं बहुत सारी, जैसे कि देवताएं होती ना, देवताओं की स्त्री, वो देखते हैं वही भी वही कर रही हैं, स्नान कर रही है, मट्टी में लोटपोट हो रही है किनारे पे, फिर स्नान कर रही है, फिर लोटपोट हो रही है। तो ये जाते हैं किनारे में, जाते घूम घूम के वैसे पहुँचते हैं, बोले देवियों आप कौन हो? तो कह रही मैं गंगा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं कावेरी हूँ, नर्मदा हूँ, सिंधु हूँ, भीमा हूँ, तापी हूँ, सब नाम बता दिया अपना। बोले यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? बोले साल भर सब लोग हमारे अंदर स्नान करके सब पाप छोड़ते हैं और हम इस दिन यहाँ पर आते हैं, अपने पाप को धो के शुद्ध होके वापस अपनी सेवा में चले जाते हैं। तो धन्यवाद प्रणाम करते सब। बोले अभी पक्का कैंसिल, कभी जाना नहीं उधर। मतलब क्या है, कितना महात्म्य है ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि के अंदर सभी तीर्थों ने, सभी देवताओं ने, सभी देवताओं को तो आश्रय नहीं, यहाँ पर देवताओं को आश्रय नहीं है सॉरी, हाँ सभी तीर्थों ने, पहाड़ों ने, नदियों ने, पवित्र स्थानों ने, कुंडों ने, सरोवरों ने यहाँ पर आश्रय लिया हुआ है, क्योंकि सब भगवान के सेवक हैं, सब जगह वो क्या करते हैं, लोगों की पाप निवृत्ति करते हैं, है ना। लेकिन स्वयं की पाप निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जगह जगह ब्रज में सब बसा हुआ है, कोशी में द्वारका बसी हुई है, काम्य वन में श्रीलंका रामेश्वरम सेतु बंध बसा हुआ है, अति बद्री केदारनाथ चार धाम बसे हुए हैं, गया कुंड है वहाँ पर, 84 कुंड है, 1 करोड़ कुंड है वैसे, लेकिन 84 प्रधान तीर्थ हैं वहाँ विराजमान है, विमल कुंड है, विमल कुंड पे सभी 84,000 तीर्थ जो है दुनिया में वो आश्रय ले चुके हैं, राधा कुंड में 68,000 तीर्थ जो है वो आश्रय ले चुके हैं, राधा कुंड में तो सभी तीर्थ सभी धन धाम वहां पर मौजूद है, जल में आश्रय लिया हुआ, जगह जगह पर हर जगह की कृपा उपलब्ध है, कहीं जाने की जरूरत नहीं यहाँ पर, यहाँ के रज के कण कण के अंदर सभी कृपाएं उपस्थित हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। केवल जगन्नाथपुरी मायापुर जो है इससे अभिन्न है, मायापुर जगन्नाथपुरी सेम है, मायापुर वृंदावन सेम है, वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी भी सेम है, तो वो परिपूर्ण धाम है। वहां पर भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन है, मायापुर में जाएंगे तो मिलेगा, जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो राधा कुंड है, प्रविष्ट वन है, कई जगह है वहां पर प्रकट हुई है, यहाँ के जगह वहां प्रकट हुई है, वहां की जगह वो सब यहाँ पर विराजमान है। लेकिन ये तीन धाम के अलावा अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं, और इनमें से भी जो ब्रज धाम है वो प्रधान है, क्योंकि कृष्ण भगवान ही जगन्नाथ बने हुए हैं, कृष्ण भगवान ही माया चैतन्य महाप्रभु बने हुए हैं, ये उनका ही स्वरूप है, उनका फिर उन्होंने लीला करने के लिए धाम प्रकट किया, मूल जो है ना, जैसे कि तीन ज्योतियां सेम है लेकिन उसमें एक मूल थी तो दो और बनवाई, तो श्री वृंदावन धाम ये गोलोक वृंदावन धाम का यहाँ पर प्रकट हो गया है। तो ये वो तीर्थ है ये, और ये जगह का महात्म्य ऐसा भी है कि इसमें कृष्ण भगवान बलराम जी अपने गायों को पानी पिलाते हैं। वहां पर जगह स्लोप ऐसा दिखता है आपको, वो स्लोप जो है वो गऊओं को उतरने के लिए पानी पीने के लिए, गौचारण करते करते यहाँ पर आके गऊओं को वो पानी पिलाते हैं। बहुत लंबी लंबी कथा है यहाँ पर, बड़े बड़े आचार्यों ने यहाँ पर भजन किया हुआ है, जैसे वल्लभाचार्य हैं, सनातन गोस्वामी महाराज की यहाँ पर कुछ भजन कुटी है, हाँ सनातन जी महाराज ने यहाँ पर भजन किया है पावन सरोवर किनारे, और प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास गोस्वामी, नाम नाम और नाम, दिन रात कभी सोते नहीं थे वो, प्रभुपाद जी कहते थे कभी हमने उनको सोते हुए देखा नहीं। और हमारे गुरुदेव जब यहाँ पर थे कुछ महीने के लिए तो अकिंचन कृष्णदास उनको यहाँ मिले थे, और वो कहते कि कभी वो सोते हुए देखा नहीं उनको, रात भर हरे कृष्णा चलता था उनका, और यहाँ बैठ के भजन करते थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। बड़ी पवित्र स्थली है ये, हाँ बड़ा सिद्ध स्थान है, सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला है, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, सब प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके किनारे में हम पहुंचे हैं, हमारी बड़ी भाग्य की बात है, सभी नदियाँ सभी तीर्थ राज सब यहाँ पर आके आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमको भी आश्रय ग्रहण करना चाहिए इस कामना के साथ कि हम भगवान के भक्त बने, भगवान के चरणों का कृपा हमको प्राप्त हो जाए, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, आलस निकल जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए और स्वार्थ निकल जाए और परमार्थ बसा रहे। ये सब जो दिव्य बातें हैं ये सब यहाँ की कृपा से प्राप्त हो सकती है, इसलिए हम बार बार यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। पावन सरोवर बड़ा दिव्य स्थान है, और नंद बाबा का प्रिय कुंड है, यशोदा का कुंड है, यहाँ ही कृष्ण का चरणामृत भी है, कृष्ण भगवान ने यहाँ पर स्नान किया है, मैया ने स्नान करवाया है, राधा रानी ने भोजन बनवाया है, कई लीलाएं यहाँ पर हैं, इसके किनारे भगवान को उन्होंने भोजन परोसा है, बहुत आनंद का स्थान है, रमणीय स्थान है। बोलो पावन सरोवर धाम की। तो उस दिन से इस नंद सरोवर का नाम जो है वो पावन सरोवर हो गया, जो सबको पावन करने वाला है, जो लोगों को पावन करते हैं उनको भी पावन करने वाला है, हाँ पावनों को पावन करने वाला है, जो पावन कराने वाले हैं पावन कारक उनको भी पावन कराने वाला है। पता है कोई एक होता है अध्यापक होता है, एक कोई अध्यापकों का अध्यापक होता है, वो उनको अध्यापकों को पढ़ाता है कैसे अध्यापन किया जाता है, वैसे पावन करने वाले जो लोग जो हैं उनको पावन करने वाला ये तीर्थ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आश्रय लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।